ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन भारत की दो दिन की यात्रा पर कल दिल्ली पहुंचे। उनके साथ यूरोपीय संघ के 27 में से 22 आयुक्त भी आए हैं। यूरोपीय देशों के कॉलेज ऑफ कमिश्नर की यूरोप से बाहर ये पहली भारत यात्रा है। इन सभी आयुक्तों ने पिछले वर्ष दिसंबर में कार्यभार संभाला था। इस यात्रा से भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में जहां एक खुशरू कार्यक्रम में शामिल होंगे। भव्य सूफी संगीत समारोह की इस वर्ष 25वीं वर्षगांठ है। ये महोत्सव अमीर खुसरो की विरासत का उत्सव मनाने के लिए दुनिया भर के कलाकारों को एक साथ लाएगा। ये कार्यक्रम आज से 2 मार्च तक आयोजित होगा। देश में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को महान भौतिकी विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। उन्हें इस महत्वपूर्ण खोज के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर देश में विभिन्न विषयों पर आधारित वैज्ञानिक संचार से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह भी आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज उड़ीसा के पुरी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के अच्छे अनुकरणीय प्रचलन और नवाचार पर 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वे 16वें आम समीक्षा मिशन की रिपोर्ट भी जारी करेंगे। उद्घाटन समारोह में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, स्वास्थ्य मंत्री डॉ मुकेश महालिंग और विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के भी भाग लेने की संभावना है। इसके बाद श्री नड्डा पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर का दौरा करेंगे। इसके अतिरिक्त उनका आज दोपहर उड़ीसा में पार्टी मामलों पर चर्चा के लिए भुवनेश्वर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल नई दिल्ली में 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव वसुधैव कुटुम्बकम में शामिल हुए। उन्होंने भारत, रूस, मंगोलिया और रवांडा के कलाकारों का प्रदर्शन देखा। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शन में वसुधैव कुटुम्बकम की भावना प्रदर्शित हुई। उन्होंने यमुना के तट पर स्थित बासेरा पार्क में इस विशेष कार्यक्रम के आयोजन के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना की। बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और नेपाल के कई हिस्सों में आधी रात करीब 2:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल में था। होली पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे ने प्रमुख मार्गों पर 48 अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। ये रेलगाड़ियां मुंबई और पुणे जैसे प्रमुख शहरों से महू, दानापुर, वाराणसी, समस्तीपुर, कन्याकुमारी और तिरुवनंतपुरम सहित अन्य स्थानों के बीच चलेंगी। मध्य रेलवे की होली विशेष रेलगाड़ियों की कुल संख्या अब 76 हो गई है। दिल्ली सरकार आज विधानसभा में आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की एक और रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के बारे में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रिपोर्ट की प्रतियां विधानसभा पटल पर रखेंगी। वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे 3 साल तक इस पद पर रहेंगे और माधवीपुरी बुच का स्थान लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में तुहिन कांत पांडे की नियुक्ति को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी जारी रहने से कई सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं। वहां मध्य और निचली पहाड़ियों पर रुक रुक कर बारिश भी हुई है। भारी बर्फबारी के बाद फिसलन के कारण शिमला जिले में नारकंडा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 5 बंद कर दिया गया है। महिला टी20 प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। जवाब में गुजरात जायंट्स ने 16 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।